का था, रूप वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियों से एक कहानी, अश्वत्थामा का कपट। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भीमसेन ने दुर्योधन का बेरहमी से वध कर डाला था। तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये तीनों वीर दक्षिण की ओर चले और सूर्यास्त के समय शिविर के पास पहुंच गए। इतने में ही उन्हें विजयाभिलाषी पांडव वीरों का भीष्म नाद सुनाई दिया, अतः उनकी चढ़ाई की आशंका से वे भयभीत होकर पूर्व की ओर भागे तथा कुछ दूर जाकर उन्होंने मुहूर्त भर विश्राम किया। दुर्योधन, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, उसे भीमसेन ने मार डाला था। इस बात पर विश्वास नहीं होता था, क्योंकि दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था। इससे तो यही निश्चित होता है कि प्रारब्ध से पार पाना किसी प्रकार संभव नहीं है। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि इन्होंने तरह तरह के वृक्ष और लताओं से भरा हुआ एक भयंकर वन देखा। वहां थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने अपने घोड़ों को पानी पिलाया और थकावट दूर हो जाने पर उस सघन वन में प्रवेश किया। वहां चारों ओर दृष्टि डालने पर उन्हें एक विशाल वटवृक्ष दिखाई दिया, जिसकी हजारों शाखाएं सब ओर फैली हुई थीं। उस वटवृक्ष के पास पहुंचकर वे महारथी अपने रथों से उतर पड़े और स्नान आदि करके संध्या वंदन करने लगे। इतने में ही भगवान भास्कर अस्ताचल के शिखर पर पहुंच गए और संपूर्ण संसार में निशा देवी का आधिपत्य हो गया। सब और छिटके हुए ग्रह, नक्षत्र और तारों से सुशोभित गगनमंडल दर्शनीय वितान के समान शोभा पाने लगा। अभी रात्रि का आरंभ काल ही था। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुख और शोक में डूबे हुए उस वटवृक्ष के निकट पास ही पास बैठ गए और कौरव तथा पांडवों के विगत संहार के लिए शोक प्रकट करने लगे। अत्यंत थके होने के कारण नींद ने उन्हें धर दबाया। इससे आचार्य कृप और कृतवर्मा सो गए। यद्यपि ये महामूल्य पलंगों पर सोने वाले सब प्रकार के सुख सामग्रियों से संपन्न और दुख के अनभ्यासी थे, तो भी अनाथों की तरह पृथ्वी पर ही पड़ गए। किंतु अश्वत्थामा इस समय अत्यंत क्रोध और रोष में भरा हुआ था, इसलिए उसे नींद नहीं आई। उसने चारों ओर वन में दृष्टि डाली तो उसे उस वटवृक्ष पर बहुत से कौवे दिखाई दिए। उस रात हजारों कौओं ने उस वृक्ष पर बसेरा लिया था और वे आनंद पूर्वक अलग अलग घोंसलों में सोए हुए थे। इसी समय उसे एक भयानक उल्लू उस ओर आता दिखाई दिया। वह धीरे धीरे गुनगुनाता वटवृक्ष की एक शाखा पर कूदा और उस पर सोए हुए अनेकों कौओं को मारने लगा। उसने अपने पंजों से कई कौओं के पर नोच डाले, किन्हीं के सर काट लिए और किन्हीं के पैर तोड़ दिए। इस प्रकार अपनी आंखों के सामने आए हुए अनेकों कौओं को उसने बात की बात में मार डाला। इससे वह सारा वटवृक्ष कौओं के शरीर और अंगावयवों से भर गया। रात्रि के समय उल्लू का यह कपटपूर्ण व्यवहार देखकर अश्वत्थामा ने भी वैसा ही करने का संकल्प किया। उस एकांत देश में वह विचरने लगा। इस पक्षी ने अवश्य ही मुझे संग्राम करने की युक्ति का उपदेश किया है। यह समय भी इसी के योग्य है। पांडव लोग विजय पाकर बड़े तेजस्वी, बलवान और उत्साही हो रहे हैं। इस समय अपनी शक्ति से तो मैं उन्हें नहीं मार सकता, लेकिन राजा दुर्योधन के आगे उनका वध करने की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब यदि मैं न्याय अनुसार युद्ध करूंगा तो निस्संदेह मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हां, कपट से अवश्य सफलता हो सकती है और शत्रुओं का भी खूब संहार हो सकता है। पांडवों ने भी तो पद पद पर अनेकों निंदनीय और कुत्सित कर्म किए हैं। युद्ध के अनुभवी लोगों का ऐसा कथन भी है कि जो सेना आधी रात के समय नींद में बेहोश हो, जिसका नायक नष्ट हो चुका हो, जिसके योद्धा छिन्न भिन्न हो गए हों और जिसमें मतभेद पैदा हो गया हो, उस पर भी शत्रु को प्रहार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके द्रोणपुत्र ने रात्रि के समय सोए हुए पांडव और पांचाल वीरों को नष्ट करने का निश्चय किया। फिर उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाकर अपना निश्चय सुनाया। वे दोनों महावीर अश्वत्थामा की बात सुनकर बड़े लज्जित हुए और उन्हें उसका कोई उत्तर नहीं सूझा। तब अश्वत्थामा ने एक मुहूर्त तक विचार करके अश्रु गदगद होकर कहा, महाराज दुर्योधन 11 अक्षोहिणी सेना के स्वामी थे। उन्हें अनेकों शूद्र योद्धाओं ने मिलकर भीमसेन के हाथ से मरवा दिया। पापी भीम ने एक मूर्धाभिषिक्त सम्राट के मस्तक पर लात मारी। यह उसका कितना खोटा काम था। हाय, पांडवों ने कौरवों का कैसा भीष्ण संहार किया है कि आज इस महान संहार से हम तीन ही बच पाए हैं। मैं तो इस सब को समय का फेर ही समझता हूं। यदि मोहवश आप दोनों की बुद्धि नष्ट नहीं हुई है तो इस घोर संकट के समय हमारा क्या कर्तव्य है, यह बताने की कृपा करें। गाथा में अभी आप सुन रहे थे महाभारत की कहानियों से एक कहानी, अश्वत्थामा का कपट। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।